कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर हरे, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, निताय गौर हरि वो हरि वो हरि वो हरि वो, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय नम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमादेव श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, स्कंद संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय, विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय, आनंद गुड़ी वैष्णव वृंद की जय, नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बृंद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोगोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय, श्री मायापुर नवदीप धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा देवी जमुना देवी की जय, भक्ति देवी की జయ శ్రీమతి తులసిమారాణికి, జయ శ్రీ హరినామ సంకీర్తనకి, జయ గ్రంథరాజ శ్రీమద్ భాగవతంకి, జయ శ్రీ శ్రీ గౌర్నితాయికి, జయ శ్రీ కృష్ణ బలరామకి, జయ శ్రీ రాధాశ్యామ సుందర లలిత విశగదేవికి, జయ శ్రీ జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రమారాణికి, జయ సమవేత భక్త బృందకి, నితాయ గౌరపి మనందే హరి హరి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నేతం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికే మూకం కృతి వాచాళం పంగులంగయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం శ్రీపరమానందమాధవం. హరివల్లి అష్టమ స్కంధ్య సప్తమ స్కంధ్య అజం శ్రీమద్ భాగవతం సప్తమ స్కంధ అష్టమ అధ్యాయ శ్లోక నెంబర్ 17 గా పాఠ కర్ రహే. ఇస్ అధ్యాయ కా నామ్ భగవాన్ నృసింహదేవ్ కా ఆవిర్భావ్. సత్యం విధాతం నిజ భృత్య భాసితం వ్యాప్తిం చ భూతేషు అఖిలేషు చాత్మనః అదృశ్యతాత్యద్భుత రూపం ఉద్భవం స్తంభే సభాయాం న మృగం న మానుషం సత్యం విధాతం నిజ భృత్య భాసితం వ్యాప్తిం చ భూతేషు అఖిలేషు చాత్మనః अदृश्यतात्यद्भुतरूपं विद्वान् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपं विद्वान् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपं विद्वान् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपं विद्वान् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपं विद्वान् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपं विद्वान् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपं विद्वान् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपं विद्वान् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं निजभृत्यभासितम् ओके सत्यं सच विधातुं सिद्ध करने के लिए निजभृत्यभासितम् अपने दास के ही शब्दों को प्रहलाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द की भगवान सर्वव्यापी है। व्याप्ति उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेषु समस्त च तथा आत्मनः अपना अदृश्यता दिखाई पड़ा अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे खंभे में सभायाम सभा के भीतर न नहीं मृगम पशु न न तो मानसम मनुष्य। इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं, भगवान श्रीहरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या वो इस खंभे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतः हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन निभ्रंत था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। ये आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान हैं। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचन को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का न सिंह का कहा जा सकता था। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं शाग्रजातं शगणरघुनाथ नितं तं सजीवं Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Visakhanitam Sya He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanasate Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Satyam vidhatum nijavrutya bhasitam Vyaptiṃ ca bhūteṣu akhileṣu cātmanah Adrusyatātyadbhutarūpaṃ udvahan Stambe savāyaṃ na mṛgaṃ na mānuṣaṃ To Bhagavān Śrī Nṛsiṃha Dev ke abhirbhāv ke upalakṣa me Ab Bhagavān Nṛsiṃha Dev ke लीलाओं के संबंध में हम श्रवण कर रहे हैं तो आज का यह श्लोक भगवान नृसिंहदेव कैसे अपने भक्त के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुए इसका वर्णन है तो हम जानते हैं कि किस प्रकार प्रह्लाद महाराज भगवान के परम भक्त थे और ये बाल्यावस्था से भगवान के प्रति प्रह्लाद महाराज ने अपना प्रेम प्रकट किया था ये स्वाभाविक प्रेम प्रकट किया था क्योंकि जब देवता लोग हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर स्वर्गलोक में ले जा रहे थे और उस समय हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके अमर वर प्राप्त करने के लिए इसलिए हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने उसकी पत्नी को बंदी बना लिया था और उस समय कयाधु गर्भवती थी अर्थात प्रह्लाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो जब देवता लोग इस प्रकार कयाधु को ले जा रहे थे और कयाधु रो रही थी अपने पति की अनुपस्थिति में वो देवताओं के द्वारा बंदिनी थी और रो रही थी नारद मुनि अकस्मात वहां पहुंच गए मार्ग में और जब नारद मुनि ने देखा कि देवता लोग एक असहाय स्त्री को, गर्भवती स्त्री को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, तो नारद मुनि ने उनको रोका और इंद्र से कहा कि तुम स्त्री को इस प्रकार की स्थिति में क्यों बंदी बनाकर ले जा रहे हो? ये स्त्री गर्भवती है, उसका पति उसके पास नहीं है, तो इस स्थिति में तुम लोग इसको बंदी बनाकर लेने का क्या कारण है? तो इंद्र ने कहा कि स्त्री के गर्भ में जो संतान है ये एक दूसरा हिरण्यकशिपु बनकर निकलेगा और ये एक हिरण्यकशिपु को तो हम संभाल नहीं सकते वो हम पर अत्याचार कर रहा है और हमें भी उनकी उसकी सेवा में लगा रहा है और ये दूसरा हिरण्यकशिपु आएगा तो हमारी अवस्था क्या होगी? इसलिए हमारी ये योजना है कि स्त्री को हम स्वर्ग लोक में ले जाएंगे और जब इसने पुत्र संतान को जन्म देगी स्त्री, तो हम उस पुत्र संतान का वध कर देंगे और स्त्री को मुक्त कर देंगे। तो जब नारद मुनि ने देवताओं की योजना के बारे में सुनी तो नारद मुनि ने कहा कि तुम इस स्त्री के संतान को वध नहीं कर सकते। स्त्री के गर्भ में जो संतान है ये कोई साधारण शिशु नहीं है, ये अनंत अनुचर बलि। नारद मुनि ने कहा कि स्त्री के गर्भ में जो शिशु है ये अनंत का अनुचर है, अनंत भगवान का अनुचर अर्थात पार्षद, भगवान का पार्षद है और बलि है, बहुत बलशाली है, तुम लोग इसका वध नहीं कर सकते। जो भगवान का पार्षद हो उसका वध तुम नहीं कर सकते। तो जब देवताओं ने सुना कि भगवान का कोई भक्त स्त्री के घर में आ रहा है, ये कोई दूसरा हिरण्यकशिपु नहीं है, तो देवताओं ने नारद मुनि की बात को मानकर उन्होंने मुक्त कर दिया कायाधि को बंधन से। और केवल मुक्त नहीं किया, क्योंकि भगवान का कोई पार्षद स्त्री के गर्भ में है इसलिए भगवान के भक्त को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए देवताओं ने कायाधि की परिक्रमा लगाई और उसके बाद कायाधि को त्याग करके अपने स्वर्ग लोक में चले गए। तो यहां पर उसके पश्चात नारद मुनि कायाधि को अपने आश्रम में ले गए और उस कायाधि को उन्होंने भगवत तत्व का उपदेश प्रदान किया था जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे। किंतु नारद मुनि पहले से जानते थे कि कायाधि के गर्भ में जो संतान है वो भगवान का पार्षद है और बहुत बलवान है। तो इसका अर्थ है कि प्रहलाद महाराज कोई साधारण भक्त नहीं थे, ये भगवान के पार्षद ये आए थे हिरण्यकशिपु के पुत्र बनकर। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान का पार्षद अभिशप्त होकर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों आए थे असुर बनकर, क्योंकि चतु कुमारों ने श्राप दे दिया था उनको। जब वो बैकुंठ जा रहे थे तो जय विजय जो बैकुंठ के द्वार पर उन दोनों ने रोक लिया था चतुर्कुमारों को, इसलिए उन्होंने श्राप दिया था। वो असुर बनकर आए थे और प्रहलाद महाराज भी भगवान के पार्षद थे, वे भी एक द्वारपाल थे वैकुंठ में, उनका नाम सुमुख था। और प्रहलाद महाराज जब द्वार पर थे, वैकुंठ के द्वार पर लोग गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, प्रहलाद महाराज ने रोक लिया था। इसलिए कोई असम्मान नहीं किया था देवताओं को, किंतु रोक लिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने प्रहलाद महाराज को कहा कि अब तुम्हें मर्त्यलोक में जाना पड़ेगा। देवताओं ने कोई अभिशाप नहीं दिया था प्रहलाद महाराज सुमुख को, जो वैकुंठ के द्वारपाल थे, किंतु भगवान विष्णु ने स्वयं उनको भेजा मर्त्यलोक में कि तुम्हें अब मर्त्यलोक में जाना पड़ेगा, किंतु भक्त बनकर। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष असुर बनकर आए जय विजय, किंतु सुमुख आए भक्त बनकर। और वो ही कयाधु के गर्भ में थे, इसलिए नारद मुनि इस तत्व को जानते थे। अन्यथा नारद मुनि ने तब तक कोई उपदेश नहीं दिया था कयाधु को, पहले से बता दिया था देवताओं को कि इसके गर्भ में जो संतान है ये अनंत अनुचर और बलि है, यह भगवान का पार्षद है, अनुचर है और बलवान है। तो नारद मुनि इस तत्व को जानते थे। बाद में नारद मुनि ने कयाधु को उपदेश दिया और प्रहलाद महाराज गर्भ में रहकर नारद मुनि के सारे उपदेशों को सुना था। तो जन्म ग्रहण करने के पश्चात प्रहलाद महाराज बाल्यावस्था से उन्होंने भगवत प्रेम को प्रकट किया। तो जब भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे प्रहलाद महाराज, तो उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता था, नेत्रों से प्रेमाश्रु की धाराएं प्रवाहित होती थी। कभी वो भगवान का नाम संकीर्तन करते करते क्रंदन करते थे, कभी हंसते थे, कभी भूमि पर लौट जाते थे। तो बाल्यावस्था में एक 5 वर्ष के बालक इस प्रकार का प्रेम प्रकट करना ये असंभव है, किंतु प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार का प्रेम बाल्यावस्था से प्रकट किया था। तो ये हिरण्यकशिपु जो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि यद्यपि भगवान के पार्षद किंतु असुर रूप में आए हैं, तो वो चाहते थे, हिरण्यकशिपु ये चाहते थे कि हमारा पुत्र भी विष्णु का शत्रु बने। जब पिता का शत्रु विष्णु है तो पुत्र का भी होना चाहिए। किंतु प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के कल्पना के विपरीत, वो भगवान विष्णु के भक्त के रूप में प्रकट हुए थे। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को भगवान की भक्ति मार्ग से विच्युत करके उनको भौतिक जड़ विद्या की शिक्षा देने के लिए 2 शिक्षकों को नियुक्त किया था, संड और अमर्क। किंतु संड और अमर्क जो जड़ विद्या की शिक्षा दे रहे थे प्रहलाद महाराज को, किंतु प्रहलाद महाराज उसके प्रति आग्रह प्रकाश नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोई भी भगवान का भक्त जड़ विद्या के प्रति आग्रह प्रकाश नहीं करता है, जानता है कि ये जड़ विद्या अस्थाई है, ये भगवान से व्यक्ति को दूर ले जाता है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि जड़ विद्या सब माया र वैभव जीव के कराए गाधा। ये जड़ विद्या जो है ये माया का वैभव है और जीव को गधा बना देता है। यद्यपि लोग जड़ विद्या प्राप्त करके गर्व का अनुभव करते हैं, किंतु वस्तुतः ये गधे के समान बन जाते हैं, क्योंकि भगवान के संबंध में उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, संसार के संबंध में उनको कोई वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, अपने संबंध में कोई ज्ञान नहीं होता है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और उनका जीवन का लक्ष्य क्या है। जड़ विद्या ये शिक्षा नहीं देती है। तो जब हिरण्यकशिपु ने भेजा प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में, तो उनके गुरु संधर अमर को उनको जड़ विद्या की शिक्षा दे रहे थे, जिस पर प्रहलाद महाराज की कोई रुचि नहीं थी। और जब कभी भी हिरण्यकशिपु ये जानने के लिए प्रयास करता था कि प्रहलाद जड़ विद्या में कितने बड़े विद्वान अब बने हैं, किंतु जब कभी भी वो जानने के लिए प्रयास करता था तो प्रहलाद महाराज भक्ति की शिक्षा देते थे हिरण्यकशिपु को। भगवान की बात कहते थे तो हिरण्यकशिपु बार बार ये सुनकर परेशान हो गया प्रहलाद महाराज से, भगवान विष्णु 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 हर समय विष्णु विष्णु कह रहा है, जबकि विष्णु को हिरण्यकशिपु अपना शत्रु मानता था। अंत में हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया अपने अनुचरों को प्रहलाद महाराज का वध करने के लिए, और हिरण्यकशिपु के अनुचरों ने तरह तरह के प्रयास किए प्रहलाद महाराज का वध करने के लिए, किंतु वध नहीं कर सके, क्योंकि जो भगवान का भक्त है, भगवान गीता में घोषणा करते हैं अर्जुन के माध्यम से, कहते हैं अर्जुन प्रतिजानी ही नामे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन तुम इस संसार में दृढ़ता पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्तों को मैं स्वयं सुरक्षा प्रदान करता हूं। और प्रहलाद महाराज को भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए प्रहलाद महाराज को मारने के लिए यद्यपि हिरण्यकशिपु के अनुचरों ने तरह तरह के प्रयास किए, किंतु प्रहलाद महाराज कभी विचलित नहीं हुए। आप कल्पना कीजिए किसका प्राण संकट उपस्थित हुआ हो और वो विचलित ना हो, केवल एक भक्त ही ऐसी स्थिति में रह सकता है। तो प्रहलाद महाराज कभी विचलित नहीं थे। जब कभी हिरण्यकशिपु के अनुचर अस्त्र शस्त्र लेकर मारने आते थे, वो केवल भगवान का ध्यान ही करते थे, भगवान का स्मरण ही करते थे, कुछ नहीं करते थे, कोई प्रतिवाद नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। उनको पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया समुद्र के गर्भ में, भगवान उनको बचा रहे थे। मत हस्ती के चरण के नीचे फेंक दिया गया, उनका कुछ नहीं हुआ। अग्नि में डाल दिया गया, कुछ नहीं हुआ। सांपों के विषधर सर्पों के बीच फेंक दिया गया, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। तो भगवान उनको सुरक्षा दे रहे थे। तो हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे संभव है कि एक छोटा सा बालक, इसको मारने के लिए मेरे सारे अनुचर विफल होते हैं, तो मैं अब स्वयं इसका वध करूंगा। ये कहकर हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन से उतर गया था और अपनी तलवार निकाल ली थी प्रहलाद महाराज का वध करने के लिए, और उसने सोचा कि अब देखेंगे इसका इसकी रक्षा कौन करता है। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि प्रहलाद, तुम सदा सर्वदा यही कह रहे हो कि तुम्हारा ईश्वर कोई विष्णु ईश्वर है, और जबकि मैं इस जगत का ईश्वर हूं, हिरण्यकश्यप अपने को भगवान मान रहा है, मैं इस जगत का ईश्वर हूं और तुम और किसी को ईश्वर मानते हो, तो तुम्हारा ईश्वर कहां पर है? जैसे नास्तिक लोग प्रश्न करते हैं भक्तों को कि आपका भगवान कहां पर है, हमें दिखा दो, तो हिरण्यकश्यप ने ऐसे ही पूछा कि तुम्हारा भगवान कहां पर है? तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि मेरा भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है, हर अणु परमाणु में व्याप्त है, हर जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त है। हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान सर्वव्यापी है और हर जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है, हर अणु परमाणु में व्याप्त है। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछा कि यदि तुम्हारा भगवान सर्वव्यापी है, क्या वो इस सभागृह के खंभे में भी है? क्योंकि हिरण्यकश्यप सारे जगत को ये बता देना चाहता था कि प्रहलाद महाराज का वचन मिथ्या है, ये प्रमाणित करना चाहता था। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस सभागृह के खंभे में भी है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि अवश्य है, भगवान जो सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, इस सभागृह के खंभे में भी हो सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप ये प्रमाणित करना चाह रहा था कि प्रहलाद महाराज के वचन मिथ्या है, इसलिए उन्होंने सभागृह के खंभे पर मुष्टिकाघात किया था, तोड़ दिया उस खंभे को सारे जगत को दिखाने के लिए कि देखो यहां प्रहलाद का भगवान नहीं है। किंतु हिरण्यकश्यप की कल्पना के विपरीत, भगवान अपने भक्त के वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए, सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम, कि अपने भृत्य सेवक प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए, जो भगवान व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, जो भगवान सर्वव्यापी हैं और हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, हर अणु परमाणु में व्याप्त है, तो वही भगवान अदृश्यतः अत्यंत अद्भुत रूप उद्भव, एक अद्भुत रूप धारण करके उस सभागृह के खंभे से भगवान प्रकट हो गए। जय श्री सिंह देव भगवान की। तो ये प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान सभागृह के खंभे से प्रकट हुए अद्भुत रूप धारण करके। तो यहां पर प्रहलाद महाराज भगवान के एक सेवक हैं, भक्त हैं, और ब्रह्मा जी वे भी भगवान के सेवक हैं, भक्त। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए उसके साथ साथ ब्रह्मा जी के वचन को भी सत्य प्रमाणित करने के लिए, दोनों भक्तों के वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया था। क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को, क्योंकि हिरण्यकश्यप अमरत्व की प्राप्ति चाहता था, तो ब्रह्मा जी ने कहा था हिरण्यकश्यप से कि मैं तो स्वयं अमर नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे अमर वर प्रदान कर सकता, और क्या वर मांगते हो मांगो। तो हिरण्यकश्यप बहुत बुद्धिमान था, ये असुर लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनके जड़ बुद्धि है, जड़ दृष्टि से बुद्धिमान होते हैं। तो उसने सोचा कि ठीक है, ब्रह्मा जी हमें अमर वर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम ऐसा वरदान मांगेंगे कि अपने आप हम अमर हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें यही वरदान दीजिए तो हमारी मृत्यु ना तो रात में होगी ना दिन में होगी। तो उसने सोचा व्यक्ति दिन में मरेगा या रात में मरेगा, इसलिए उन्होंने मांगा हमारी मृत्यु ना दिन में ना रात में। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथस्तु। फिर उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु ना घर में होगी ना बाहर में होगी, क्योंकि व्यक्ति घर में मृत्यु को प्राप्त करेगा या बाहर में। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथस्तु। फिर उन्होंने कहा, फिर सोचा और कुछ रह गया है, फिर सोचा ना हमारी मृत्यु पृथ्वी पर होगी ना आकाश में होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथस्तु। फिर उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु ना किसी मनुष्य या पशु से होगी। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। फिर उसको संदेह हुआ कि मनुष्य और पशु के अतिरिक्त और कोई मुझे मार सकता है, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आपके द्वारा सृष्ट कोई भी जीव के द्वारा हमारे हमारा वध नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर उन्होंने कहा कि हमारा वध किसी अस्त्र से या शस्त्र से भी नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। फिर उसको संदेह हुआ और कुछ रह गया। तो फिर ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा कि मेरा वध किसी सजीव या निर्जीव वस्तु से नहीं हो सकता। तो उन्होंने सोचा कोई सजीव व्यक्ति या निर्जीव वस्तु से हमारा वध हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु ठीक है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमने मृत्यु के जितने द्वार हैं सभी को बंद कर दिया और अपने आप हम अमर बन गए। ब्रह्मा जी अमर वर नहीं देते तो ठीक है। किंतु भगवान हिरण्यकश्यप से भी बुद्धिमान है, उनको इसलिए असमर्थ कहा गया है कि भगवान की कोई समता नहीं कर सकता ना उनसे बढ़कर हो सकता है। असम कोई समता नहीं कर सकता और ऊर्ध उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, इसलिए भगवान को असमर्थ कहा गया। तो भगवान की बुद्धि से किसी की बढ़कर बुद्धि नहीं हो सकती, और हिरण्यकश्यप अपने को बुद्धिमान सोच रहा था तो भगवान उससे भी और बुद्धिमान निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी के जितने भी वरदान हैं सभी को सत्य प्रमाणित किया और फिर भी उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो भगवान नृसिंहदेव इस समय वध किए, कब हिरण्यकश्यप का वध किया? संध्या के समय, गोधूली लग्न, जो दिन और रात नहीं है उसको हम दिन नहीं कर सकते, रात भी नहीं कर सकते। और भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके उसको ले लिया अपनी गोद में और जांघ के ऊपर रखा। तो वो ना तो पृथ्वी है ना आकाश है, और भगवान बैठे थे कहां पर? दरवाजे के चौखट पर। वहीं बैठकर वध किया। तो वो ना तो घर है ना बाहर है। और पुनः भगवान जिस रूप में प्रकट हुए थे वो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट जीव नहीं थे, ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रकट नहीं किया। तो उस वरदान को भी भगवान ने सत्य प्रमाणित किया। और उन्होंने मांगा था ना नर और पशु, तो भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए जो आधा नर और आधा पशु। इनको ना तो मनुष्य कहा जा सकता है ना पशु कहा जा सकता है। और फिर उन्होंने मांगा था वरदान कोई अस्त्र शस्त्र से वध नहीं होगा और कोई सजीव या निर्जीव वस्तु से भी वध नहीं होगा। तो भगवान ने अपने नाखून से नाखून कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता, और नाखून भी सजीव नहीं है और निर्जीव भी नहीं है। जब हम नाखून को काट देते हैं हमें कष्ट नहीं होता, किंतु नाखून बढ़ता रहता है। तो ये सजीव भी है और निर्जीव भी। तो इस प्रकार नाखूनों के द्वारा उसके वक्ष विदारण करके भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितुं। तो दोनों भक्तों के वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान प्रकट हुए एक अद्भुत रूप धारण करके, न मृगं न मानुषं, न कोई पशु और न मनुष्य रूप। तो इस प्रकार भगवान हिरण्यकशिपु ने जो वरदान प्राप्त हुआ था उसकी भी रक्षा की, प्रहलाद महाराज की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का वध किया। जय श्री नृसिंहदेव भगवान की। तो इस प्रकार भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भक्त पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हैं और सदा सर्वदा उनका स्मरण करते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इसलिए शरणागत भक्त का ये लक्षण है, अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, रक्षयिष्यति विश्वास। भगवान कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, ये शरणागत भक्त को दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जिस भक्त का इस प्रकार दृढ़ विश्वास है भगवान अवश्य उस भक्त की रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।